श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्री प्रभुपाद की जय। राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। जय जशदानंदन व्रज जनरंजन। 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 जशदानंदन व्रज जनरंजन।
कृष्ण हरे
नारायणं नमस्कृत्यं
चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् तत जयाद्मुदीरये नष्टप्राये सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती न इष्टकी श्री राधा गिरिधरी भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की जय। गोत्रिमान राजन श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 अध्याय 4 से श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक संख्या है 39 49। मेरे पीछे कृपया आप लोग बोलिए। मूलं हि विष्णुदेवानां यत्र धर्मा सनातनः तस्य च ब्रह्म गोविप्रः तपयज्ञा सदक्षिणा मूलं हि विष्णुदेवानां यत्र धर्म सनातन तस्य च ब्रह्मा गोपिप्राः तपोयज्ञा सदक्षिणा मूलं हि विष्णुदेवानां यत्र धर्म सनातन तस्य च ब्रह्मा तस्य च ब्रह्म गोविप्रा तपो यज्ञा सदक्षिणा।
Yeah.
ஷ்ணுதேவானாம் யத்ர தர்ம சநாதனம் श्लोकों के आए हुए शब्द का कृपया बोलिए। मूलम आधार ही निसंदेह विष्णु भगवान विष्णु है देवतां देवानां देवताओं के यत्र जहां धर्म धर्म सनातन शाश्वत परंपरागत तस्य उसका च भी ब्रह्म सभ्यता गो गोरक्षा विप्रा ब्राह्मणगण तप तपस्या यज्ञ स दक्षिणा समुचित पारिश्रमिक समेत ट्रांसलेशन एंड पर्पट है डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की ट्रांसलेशन। समस्त देवताओं के आधार भगवान विष्णु है जिनका वास वहीं होता है जहाँ धर्म परंपरागत संस्कृति वेद गोएं ब्राह्मण तपस्या तथा दक्षिणायुक्त यज्ञ होते हैं। दक्षिणायुक्त यज्ञ होते हैं तात्पर्य यहाँ पर सनातन धर्म का वर्णन किया गया है जिसमें ब्राह्मी संस्कृति ब्राह्मण यज्ञ तथा धर्म निहित होते हैं। ये मिलकर विष्णु साम्राज्य की स्थापना करते हैं। विष्णु साम्राज्य के बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता। न ते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु। इस आसुरी सभ्यता में दुर्भाग्यवश लोग दुराशया ये नहीं समझ पाते कि मानव समाज से स्वार्थ विष्णु में निहित है। दुराशया ये वैरथ मानिन अतः तो निराशपूर्ण आशा में लगे हैं। लोग ईर्ष भावनामृत कृष्ण भावनामृत के बिना ही सुखी रहना चाहते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन ऐसे अज्ञानी नेता करते हैं जो मानव समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। कंस के असुर अनुयायी मानव सुख की परंपरागत स्थिति को भंग करके देवताओं और भक्तों को हराना चाह रहे थे। जब तक देवताओं तथा भक्तों का प्राधान्य नहीं होगा तब तक असुरगण बढ़ेंगे और मानव समाज अस्त व्यस्त होता रहेगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वकदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सगण रघुनाथनितं तं सजीवम् साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता सिद्धिशाखायुतांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो यहाँ पर भागवत के जो 10वां स्कंध है, खास करके भक्तों की अपेक्षा रहती है उस स्कंध को, भागवत की जो मक्खन है, सारे जितने भागवतों का जो सार है वो 10वां स्कंध है, तो उन चीजों को भक्तों की अपेक्षा रहती है। तो यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कृष्ण कथा जो रसपान करा रहे हैं, तो वो सौभाग्य के अधिकारी हम लोग बने हैं। कृष्ण कथा जहाँ पर ब्रह्मा इंद्र वो लोगों को प्राप्त नहीं हो पाती है, तो हमारे जैसे बद्ध जीव को मिला है, तो बड़े भाग्य है, मैं भाग्य हमारा है। जहाँ पर कृष्ण की कथा नहीं होती है, संतों की आदर नहीं होती है, भगवान की पूजा नहीं होती है, तो भले वो स्वर्ग की इंद्र की लोक भी क्यों ना हो, तो वहां पर ऐसे कोई वहाँ वो इतने बड़ी जगह माना नहीं जाता है। धन्य है भारतवर्ष जहाँ पर भारतवर्ष के लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं, तो ये लोगों की भारतवर्ष के लोग बड़े भाग्यवान हैं। तो आज के प्रसंग में कंस अपने मृत्यु के विषय में सुनकर के बड़े ही घबरा गया है, और ये मृत्यु से भयभीत होकर के अपने जो जीजाजी थे और बहन थे उनके पास जाते हैं, और वहां पर भक्तों से आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद उसने नीचों की संगति, नीच लोगों की संगति की है। कंस ने वसुदेव और देवकी जैसे भक्तों का संग तो किया, आशीर्वाद लिया, फिर उसके बाद नीच लोगों से सुना, वहां पर उसको वो नहीं करना चाहिए था। नीच लोगों से सुनने से बड़े दुर्गति होती है, चाहे कितने बड़े व्यक्ति हो, जब नीच से सुनता है तो फिर उनका बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि नाश हो जाती है। तो कंस ने सुधर रहा था, अच्छा हो रहा था, भक्तों की संग लेकर के उनका जीवन को बदल रहा था, लेकिन फिर ये कुसंग के कारण फिर बड़े ही उनका जीवन का बहुत बड़ी खतरा आके पहुंच जाती है, फिर वो भक्तों के ऊपर फिर भगवान के विरोधी बन जाता है। और जब इस प्रकार के संग लेकर के वो आ रहा था और अपने मंत्रियों से मिला, जब मंत्रियों को मिला उनके मंत्रियों ने उनको याद करा दिए, अरे महाराज तुम जानते नहीं हो तुम्हारे भीतर कितने बड़े वीरता है, तुम्हारे भीतर कितने वीरत्व है, तुम्हारा शक्ति क्या है आप भूल गए हो, इसलिए हम लोग आपको याद करा रहे हैं, आप कितने बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हो इस विषय में हम लोग आपको याद करा रहे हैं। जब आप युद्ध क्षेत्र में होते हैं तो आपके सामने जो देवता लोग खड़े रहते हैं तो आपका वीरता को देखकर वो लोग हाथ जोड़ते, आपके सामने हाथ जोड़ते हैं और आपका गुणगान करते हैं, आपका स्तुति करते हैं, और जब ऐसे देवता लोग आपके साथ लड़ते हुए वो पीठ को पीछे करके भागते हैं और उनके हाथ में अस्त्र नहीं होता है और उनके पास रथ नहीं होता है, तो उस समय आप उनको बध नहीं करते, छोड़ देते, तो आप भूल गए आपके शक्ति के विषय में। तो इस समय आप जो ये देवता लोग आपके शक्ति के द्वारा पराजित हुए हैं, और भले ही वो देवता लोग आपके द्वारा पराजित हुए हैं, और तो कोई कल के श्लोकों के हमें श्लोक में हमें सुने हैं, जब कोई रोग होता है, रोग को यदि पूरा पूरा इलाज नहीं कराया जाता तो फिर वो रोग आ सकता है, शरीर में वो आ सकता है। और रोग को पूरा पूरा इलाज करना चाहिए, और शत्रु को पूरा पूरा विनाश करना चाहिए, और आपको पूरा पूरा बुझा देना चाहिए, नहीं तो ये बीच में वो उनके भयंकर रूप को दिखाएंगे। इसलिए आप डरो मत, आप बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हो, फिर से आप ये देवताओं को समूल रूप में नाश करने के लिए आप युद्ध करो, और हमें भी आदेश दो, हमें भी युद्ध करें। इस प्रकार मंत्रियों का सलाह लेकर के कंस ने फिर उनका जो उग्र प्रवृत्ति है, अपने भीतर जो सोया हुआ था, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर एक दैवी प्रवृत्ति रहती है, लेकिन दुष्टों के संगों से उनका आसुरिक प्रवृत्ति दैवी प्रवृत्ति रहता है, आसुरिक प्रवृत्ति भी रहता है, लेकिन कुसंग से उनके भीतर आसुरिक प्रवृत्ति जगती है। तो ये कंस उनके भीतर दैवी लक्षण दिखाने के लिए जा रहा था, लेकिन अपने मंत्रियों के, अपने चेले अनुयायियों के चापुरुषि किए, अरे क्या कर रहे हो आप, इतने बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हो, इसे जब चापुरुषि की है तो उनके भीतर जो दैवी प्रवृत्ति है वो ढक गया, और उनके भीतर जो आसुरिक प्रवृत्ति है तो वो फिर प्रकट हुआ। तो फिर वो देवताओं और भक्तों को सताने के लिए योजना बनाने लगा। तो आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भावना मृत के बिना मानव समाज सुखी नहीं बन सकता। न से विदु स्वार्थ गति विष्णु, कलिजुग में कले नष्ट दृशाम, कलिजुग में सबका देखने की शक्ति, कलिजुग में सारे लोग अपने देखने की शक्ति को खो चुके हैं। नष्ट दृशाम, कलिजुग में सबका दृष्टि शक्ति नष्ट हो चुकी है, सब अंधे बन गए हैं। अपने हित क्या है, न ते विदु स्वार्थ गति विष्णु, अपने स्वार्थ क्या है, अपने हित किसमें है, अपने हित क्या है, कलिजुगों के लोग देख नहीं पाते। न ते विदु स्वार्थ, अपने स्वार्थ जो विष्णु है उनको आप पहचान नहीं पाते हैं। प्रहलाद महाराज ये बात को कहते हैं, अथ देह क्षेत्र सुताप्त भीतर जनस मोयं अहं मेमेति, प्राय संसार के लोग मैं और मेरा में हो करके, ये कर्म चक्र में पतित, मैं और मेरा ये कर्म चक्र में पतित हो करके अपने जीवन की जो लक्ष्य है वो भूल चुके हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये बात को प्रहलाद महाराज बताते हैं, जब नदी बहती है ना, तो नदी के बहती हुई नदी के धारा में यदि कोई व्यक्ति जाए तो वो आसानी से बह जाएगा, उसके लिए कोई परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। लेकिन नदी के प्रतिकूल के उल्टा दिशा में कोई उठने के लिए कोशिश करे बहुत मुश्किल है, बहता हुआ धारा में कोई भी बह जाएगा। इसी प्रकार सांसारिक माया इंद्रिय तृप्ति के धारा में कोई भी आसानी से बह जाता है, संसार के भौतिक संसार में माया के स्रोत में इंद्रियों की प्रभाव में कोई भी व्यक्ति आसान, जितना जल्दी हमें इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं, अपने शरीर सुख सुविधा के विषय में सोचते हैं, इतने जल्दी इतने आसानी से हम भगवान को सोच नहीं पाते। अपने शरीर के हित, शरीर के सुख, ये विषय में हमें जितने जल्दी सोचते हैं, जितना ज्यादा सोचते हैं, इतने जल्दी इतने ज्यादा हमें भगवान के विषय में हमें सोच नहीं पाते, इतना आते ही नहीं है। तो ये कलयुग में भौतिक संसार में तो नदी की धारा में बह जाना आसान है, माया के स्रोत में बह जाना आसान है, लेकिन उसके विपरीत उल्टा, नदी के उल्टा उठना वो बहुत बड़ी मुश्किल है। इसीलिए साधु संत लोग हाथ दिखा देते हैं, बढ़ा देते हैं, हाथ पकड़ लो, और जो हाथ दिखाते हैं वो भी मजबूत होना चाहिए। जैसे कि नदी की धारा ऊपर से बह रही है, उस कोई व्यक्ति को उल्टा में ऊपर उठना है तो कभी कभी हम देखते हैं कि नदी के बीच बीच में ऊपर की ओर एंकर लगाया जाता है। ये एंकर, ये आप लोग कभी जो लोग हरिद्वार गए हैं तो लोग वहां पर देखा गया है कि जंजीर लगाया जाता है, तो जंजीर को पकड़ करके वो स्नान वगैरह करते हैं, नहीं तो बह जाएंगे। उसी प्रकार कोई व्यक्ति को नदी का ऊपर उल्टा दिशा में उठना है तो क्या होती है ना, वो बीच बीच में एंकर लगाया जाता है। ये एंकर क्या है? स्तन के ब्रांचेस है, स्तन की ब्रांच है। हाँ, तो ब्रांच में वो जगह पे क्या होती है? साधु संघ होती है, भगवान के कथा कीर्तन यही होती है। हाँ, यदि हमें ये करते रहें तो फिर उसी के संस्पर्श में रहें, फिर माया के स्रोत में हमें बह नहीं जाएंगे। हाँ, हर स्कंद संस्था में क्या शिक्षा दी जाती है? इंद्रियों को कैसे नियंत्रण किया जाए, कि आज हर कोई काम क्रोध लोभ मोह आसक्ति से इतने अपने जीवन को अस्त व्यस्त करके रखा है, वो अपने कल्याण क्या है वो सोच नहीं पाता है, वो दिखता नहीं उसको। हाँ, और हर स्कंद संस्था में यही चीज को शिक्षा दिया जाती है, किस प्रकार इंद्रियों को नियंत्रण किया जाए, इंद्रियों को कैसे काबू किया जाए, यही विषय में शिक्षा दिया जाती है। और इंद्रियों को नियंत्रण किए बिना कोई भी भक्ति मार्ग में उन्नति नहीं कर सकता। आप लोग कहोगे कि भक्ति करेंगे तो इंद्रियों तो अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। सही बात है, भक्ति करेंगे तो इंद्रिय अपने आप बस में हो जाएगा, इंद्रियों नियंत्रण में आ जाएगा। तो कितने लोग भक्ति करना चाहते हैं, उनको जबरदस्ती भक्ति में लगाया जाता है। कितने लोग स्वतः स्वेच्छा से घर से बाहर घर से मंदिर आना चाहते हैं, तो व्यक्ति को जबरदस्ती घर से मंदिर आना होता है, मन नहीं कहता है लेकिन उनको जबरदस्ती घर से मंदिर आना होता है। पहले शुरुआत के समय कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप करना नहीं चाहता है लेकिन उनको जबरदस्ती हरे कृष्ण महामंत्र जप करना होता है, जबरदस्ती ये इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होता है। जब जबरदस्ती ये इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो जबरदस्ती भगवान का सेवा करते 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 भगवान का सेवा करते 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 ये इंद्रिय शुद्ध हो जाता है। जब इस भगवान का सेवा करते करते ये इंद्रिय शुद्ध होता है, जब इंद्रिय शुद्ध होती है तब शुद्ध इंद्रियों के द्वारा भगवान को हम पकड़ पाते हैं। जब इंद्रिय शुद्ध होती है शुद्ध इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को समझ पाते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे ग्राह्य इंद्रिय, श्री कृष्ण का नाम को ये जड़ इंद्रियों के द्वारा हमें समझ नहीं सकते। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद मतलब ग्रहण नहीं किया जा सकता है, ग्राह्य में इंद्रिय ग्रहण नहीं किया जड़ इंद्रियों के द्वारा उनको नहीं ग्रहण किया जा सकता है। हाँ, सेवान्मुखे ही जीवादो, जब सेवा करते हैं हरिनाम, हाँ हम भगवान की सेवा क्यों करते हैं ना, अच्छे से और भगवान का सेवा करें, भगवान का सेवा में लगे। हरिनाम करने का मतलब यही है, हमें हरिनाम कर रहे हैं ना, सॉरी हमें सेवा इसीलिए करते हैं अच्छे से हरि हरे कृष्ण महामंत्र जप करें। तो सेवान मुखे ही जिह्वा दो, जब जिह्वा इंद्रिय जब भगवान का प्रसाद लेगा, भगवान का नाम लेने लगेगा, सेवा करेगा, तो जब सेवा करेगा तो सेवा करते करते उनका जीवा इंद्रिय जब शुद्ध हो जाएगा, स्वयं अपने आप वो समय उनको अलग एक टेस्ट मिल जाएगा। जब सेवा करते करते जीवा जीवा इंद्रिय शुद्ध हो जाएगा, पहले तो हमें शुद्ध नाम नहीं होगा, पहले जबरदस्त बलात् ये जीवा को भगवान का नाम लेने में लगाना पड़ेगा। जब ये जीवा इंद्रिय भगवान का नाम लेगा और लेने लगेगा तो ना जबरदस्ती जब भगवान का नाम अंदर जाने लगेगा तो फिर वो जीवा इंद्रिय शुद्ध हो जाएगा, फिर शुद्ध नाम ये जीवा में स्फुरित होगा, अतः स्वयं स्वतः स्वतः स्फुरित होने लगेगा। वो समय शुरुआत में जबरदस्ती ले रहे थे लेकिन जब शुद्ध हो जाएंगे तो वही नाम स्वतः हमारे जीवा में स्फुरित होने लगेगा। गौरकिशोर बाबा जी महाराज जब भजन करते थे, कोई भी विषय व्यक्ति को मिलना नहीं चाहते थे। आज के तात्पर्य में यही प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक संसार के बीच में कृष्ण भावनामृत को रखा नहीं जाए तब तक कोई भी सुखी नहीं हो सकता। और यही उद्देश्य को लेकर के श्रील प्रभुपाद जी ने इंदिरा गांधी को मिलने के लिए गए थे। हाँ, उस समय इंदिरा गांधी को मिलने के लिए प्रभुपाद जी को छोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद जी जब चलते थे अपने गोरे शिष्यों को लेकर चलते थे, और वहां पर जब पहुंचे इंदिरा गांधी को मिलने के लिए प्रभुपाद जी ने, तो उनके शिष्यों को रोका रोका दिया गया और प्रभुपाद जी अकेले अनुमति दिया गया। और प्रभुपाद जब इंदिरा गांधी को अपने अकेले मिले तो वही विनती किए थे प्रभुपाद जी ने, यही किए बताए थे कि जो आजकल स्कूल कॉलेज के जो सिलेबस है, शिक्षा की जो व्यवस्था है, उसमें
गीता भागवत की रखा किया करो। प्रभुपाद जी ने यही बात को वहां पर कहे थे। तो मैं क्या बता रहा था कि हाँ, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जब भजन करते थे तो कोई भी विषय व्यक्ति को मिलने के लिए पसंद नहीं करते थे, कोई भी विषय व्यक्ति को मिलना नहीं चाहते थे। जब एक बार भजन कर रहे थे तो कलकत्ता के एक धनी व्यक्ति, अधनी व्यक्ति क्या हो, कैसे उनका मन होता है, मलिन होता है, विषय व्यक्ति होता है, विषय उनका मन में जिसके पास धन है वो बड़े विषय होता है। हाँ, तो विषय व्यक्ति सबका नहीं कर पाएंगे। सुदामा जैसे भक्तों के पास धन हो कि प्रहलाद महाराज जैसे व्यक्ति के भक्तों के पास धन हो तो ये बात उनके लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर धनी व्यक्ति ही विषय होती है। हाँ, तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ऐसे विषय व्यक्ति को मिलने के लिए इच्छा नहीं करते थे। तो एक कलकत्ता से एक धनी व्यक्ति आया गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को मिलने के लिए। जब आया और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के सामने पहुंचा तो वह समय के वैष्णव ने एक बहुत बड़ा कीमती साल लेकर के गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को भेंट दिए। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वो कीमती साल को लिए और बड़े ही देख रहे थे, ऐसे ऐसे करके देख रहे थे, हाँ ऐसे 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 पलट रहे थे। हाँ, और साल लेकर के वो व्यक्ति को बड़े ही प्रशंसा करने लगे। और ठीक उसी समय और एक गृहस्थ वैष्णव और एक आया और आकर के बाबा जी महाराज को कुछ लक्ष्मी दिए। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज लक्ष्मी को लिए लेकर के अपने शरीर में घोड़े हुए जो चादर है, वो कपड़े हैं, वो चादर में हाँ वो पैसा को रख करके दो चार गांठ लगा करके उनको संभाल के रख रहे थे। और रख रहे थे, वो बार बार वो देख रहे थे, हाँ मैं ठीक से रखा कि नहीं, गांठ अच्छा से लगाया कि नहीं, कोई निकल नहीं जाएगा, तो इसी प्रकार वो बार बार देख रहे थे। और वो दिया हुआ लक्ष्मी दिया हुआ व्यक्ति को वो बड़े प्रशंसा कर रहे थे। तो खड़े खड़े कलकत्ता से जो धनी व्यक्ति आया था वो खड़े खड़े गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का ये क्रियाकलाप को वो देख रहे थे। हाँ, जब देख रहे थे तो उनका मन में पहले गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के प्रति थोड़ा सा जो श्रद्धा थी वो श्रद्धा खत्म हो गया। एक ऐसे साधु है तो ये लेकर के उनको बार बार देख रहे हैं और पैसा लेकर के वह संभाल रहे हैं, वो कैसे साधु है। तो और बाबाजी महाराज को मिलना क्या है, वो वहीं से उठ चले गए और कलकत्ता चले गए। और कुछ दिन के बाद भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज जब कलकत्ता गए थे और वो धनी व्यक्ति को मिले, जब धनी व्यक्ति को मिले तो वो विषय व्यक्ति भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज को बोलने लगे, अरे आपने कह रहे थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इतने बड़े बैरागी है, इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन ये क्या है, ऐसे एक व्यक्ति से चादर लिए, कुछ पैसे लिए और लेकर के उनका खुशामती कर रहे थे, वो कैसे है, ये क्या है। जब इस प्रकार का कह रहे थे भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज को, तो भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज कहने लगे आप उनका कृपा से वंचित रह गए, आप उनके कृपा से वंचित हैं, आपके आंखों में बीमारी हो गया है तो आपका आंखों का ट्रीटमेंट कीजिए। जब कोई व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाता है ना तो निकट में वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, जब मोतियाबिंद ऑपरेशन करके मोतियाबिंद को निकाल दिया जाता है तो वो फिर सारे वस्तु को स्पष्ट देखता है। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज बोले आपको बीमारी हो गया है। हाँ, सूर्य का प्रकाश उल्लू को कैसे पता चलेगा, सूर्य का प्रकाश है लेकिन उल्लू क्या कहेगा, वो अंधेरा है। ठीक उसी प्रकार आप उनका वैष्णवत्व को दर्शन नहीं कर पाया, कृष्ण के प्रति उनका जो भक्ति है, संसार के प्रति उनका जो वैराग्य है, तो आपको दिखाई नहीं पड़ा। जब तक हमारे मन और बुद्धि में इंद्रिय तृप्ति के लालसा बनी रहती है तो भगवान के भक्तों को हमें समझ नहीं सकते। कैसेट के भीतर पहले का जो कचरा जमा हुआ है, ये कचरा को जब पहले निकालेंगे फिर नया माल हमें उसमें भर सकते हैं। उसी प्रकार आपके हृदय में ये संसार की जो विषय वासना है, ये जो कचरा है आपके हृदय में वो बैठा हुआ है, पहले कचरा को निकालिए तब जाके आप संतों के दर्शन, भगवान के दर्शन कर सकते। तो ठीक उसी समय भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज जब उड़ीसा में प्रचार कर रहे थे, और बालेश्वर में, उड़ीसा में एक जगह है जो लोग बालेश्वर खीरचोर गोपीनाथ दर्शन करने के लिए गए वही जगह में बालेश्वर के एक छोटा सा गांव में भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज वो जो प्रचार कर रहे थे, तो उनके प्रचार करते समय एक उनके साथ ये घटना को सुने थे। तो वो समय पहले समय में गांव गांव में भागवत टुंगी हुआ करता था। लोग दिन भर खेती में काम करते थे, जो भी काम धंधा करते थे, और शाम के समय भागवत टुंगी में जाकर के भागवत की चर्चा बखान सुना करते थे। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज बालेश्वर की जो एक गांव है वहां पर जो प्रचार कर रहे थे, ठीक उसी समय एक घटना वहां पर हुआ था। तो एक वहां पर एक वो गांव में पहले एक ही भागवत टुंगी था, लेकिन भागवत सुनने के लिए आने वाले जो लोग है वो लोगों में थोड़ा सा झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो एक भागवत कक्षा वो दोनों में डिवाइड हो गया, दो हो गया। जब दो हो गया तो एक नंबर वाला, एक नंबर भागवत वाले तो एक फेस्टिवल कर रहे थे। वो फेस्टिवल में एक गान बजाने वाला, हरि कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने वाला एक व्यक्ति को वो बुलाए, और बुला करके वो हरे कृष्ण कीर्तन को गाने के लिए उनको आदेश दिया। तो पहले वाले भागवत जो लीडर था, दलपति था, उनका आदेश लेकर के वो जो गान बजाने वाला व्यक्ति है वो मृदंग करता लेकर के ऐसे गाने लगा, ऐसे गाने लगा, और कृत्रिम ढंग से गा रहा था, कृत्रिम भाव दिखा रहा था। थोड़े समय में उनके आंखों से अश्रु बहने लगा, अश्रु कंप पुलक, उनके रोम खड़े हो गए, बहुत कुछ सिम्टम्स, बहुत कुछ भक्ति का लक्षण दिखाई पड़ा। और दिखा वो लक्षण सब दिखाते दिखाते वो जमीन में गिर पड़ा। गिर करके वो आधा घंटा तक अचेत हुई जमीन में लेटा रहा। तो ये बात को जब दूसरा ग्रुप वाले सुने कि हाँ ये हमारे विपक्ष पार्टी, हमारा शत्रु दल ऐसे एक गायक गान बजाने वाला को बुलाए थे, ऐसे भक्ति का भाव सब दिखाया, वो आधा घंटा तक अचेत होकर जमीन में गिर पड़ा था। तो वो दूसरा पार्टी वाले वो सोचे कि हम भी ऐसे एक गाने बजाने वाला को बुलाएंगे तो पहले वाला भाव भंगी दिखाने वाला से ज्यादा दिखाए, ज्यादा समय तक जमीन में लेटे पड़े, अचेत होकर के भाव भंगी दिखा करके वो लेटे रहे। तो ये विचार करके तो दूसरा ग्रुप वाले एक गाने बजाने वाले पेटू को बुलाए, पेटू आदमी को बुलाए, बुला करके उनको कुछ परिसर में गांजा पिला दिए। पहले समय में क्या होता है, गांव में हम देखें ब्राह्मण हवन में स्वाहा स्वाहा करते रहता है और यह हाथ में बीड़ी फूंकता रहता है, सिगरेट पीता रहता है, चाय पीता रहता है, लेकिन इसकन में ये सब कितने शुद्ध नियम है, कितने कड़क। तो गांव में हमें देखें ये सब बातें होता रहता है। तो वो व्यक्ति को बुलाए और कुछ पैसों में गांजा पिला दिए, पिला करके उनको तागिद कर दिए। दूसरा ग्रुप का जो लीडर था उनको तागिद कर दिए, देखो हमारा पहला जो हमारा विपक्ष पार्टी है, शत्रु पार्टी है, वो लोगों ने एक गायक को बुलाए थे और ऐसे ऐसे कर दिखाया है, तो आपको हमें चारा ना दे रहे हैं, तो चारा ना रखो, इस समय आप चारा ना रखो, अधिक भावभंगी दिखाओगे तो अधिक पैसा देने के लिए हम विचार करेंगे। तो हमारा शत्रु पक्ष और अधिक कुछ करके दिखाना है आपको, तो ये बोल करके वो व्यक्ति को पैंडल में छोड़ दिया। और वो व्यक्ति पैंडल में गया और जैसे ही अपने गले में मृदंग डाला, मृदंग डालते ही वो जमीन में गिर पड़ा। वो तो कुछ समय बजाया, जो कुछ किया, लेकिन ये मृदंग लेते ही, गिनी बजाते ही वो जमीन में गिर पड़ा। और वो समय जब गिर पड़ा, वो समय और गांव में, उड़ीसा में, बंगाल में, गांव में क्या होती है, अब वो जो घटना हो रही थी वो बड़ी गर्मी की दिन थी, और वो व्यक्ति गले में मृदंग डालते ही जब जमीन में गिर पड़ा, और वो समय ऊपर से गर्मी, कड़क धूप, ऊपर से गर्मी और गर्मी धूप के द्वारा वो जमीन का मिट्टी भी तप गई थी, गर्म हो गई थी, और वो व्यक्ति जब जमीन में गिर पड़ा था, ऊपर से गर्म और नीचे का जो मिट्टी वो गर्म हो गया था, वो मिट्टी का गर्म, ऊपर गर्म, मिट्टी का गर्म, उसका शरीर को शरीर में इतना लग रहा था वो पसीना पसीना हो गया। वो आधा घंटा लेटेगा क्या, वो दस दस मिनट में वो पसीने में लथपथ होकर के हाँ उठ करके खड़ा हो गया। हाँ वो लोग कहते आधा घंटा हमारा पार्टी दूसरा पार्टी वाले दूसरा पार्टी का व्यक्ति गिरा था, ये 10 मिनट में वो हाँ खड़ा हो गया और खड़े होकर के दलपति के पास गया और कहने लगा हाँ अभी जो मेरा पैसा देना है दे दीजिए, मुझे जाना है। हाँ तो दलपति क्या कहने लगा, अरे भाई हम आप तो हमारा नाक कान काट करके रख दिया, हमारा सारा योजना को पानी में मिला दिया, हमको चूना लगा दिया, अभी पैसा क्या मांग रहे हो। हाँ तो आपको हमें ऐसे ऐसे कर दिखाने के लिए बोले थे, आपने तो सब बिल्कुल उल्टा कर दिखाया। तो वो जब दलपति कहने लगा तो वो व्यक्ति क्या कहने लगा, अरे भाई चारा आना का भाव कब तक रहेगा, आप लोग चारा ना दिए थे, चारा आना दिए थे, वो चारा ना का भाव 10 मिनट तक रहा, ये चारा आना का भाव कब तक रहेगा। तो कहने का अर्थ है तो हमारे कृत्रिम हाँ बनावटी भाव के द्वारा हमें भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते कि लोगों को आकर्षित नहीं कर, ऐसा तो भक्त जो होता है दूसरे को आकर्षित करने के लिए वो भक्ति नहीं करता है, उनका एक ही इच्छा रहता है कि मैं कृष्ण को कैसे मैं भक्ति की तरह संतुष्ट करूं। लेकिन ये भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि हमें भाव को दिखाएं। हाँ भाव को दिखाने के लिए हम भक्ति नहीं करना चाहिए, अब भाव कोई दिखाने का चीज नहीं है, भक्ति करने से जो भाव एक भक्त के भीतर उत्पन्न होती है वो कोई दिखाने की चीज नहीं है या कोई मनोरंजन नहीं है। हाँ यदि भी भक्ति करते समय जब कोई भक्त के भीतर सौभाग्यवश कोई भक्त के भीतर हाँ अनर्थ निवृत्ति अनर्थ नष्ट होकर के निष्ठा रुचि जब दृढ़ भक्ति में वो पहुंच जाता है तो फिर वो भक्ति को किसी को दिखाता नहीं है। हाँ यदि भी कुछ भक्ति के लक्षण उनके भीतर दिखता है वो गुप्त रखता है, वो छुपाता है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भक्ति करते समय जब कुछ भाव दिख पड़ता है वो सामने खड़े हुए विजातीय लोगों को दिखाते नहीं थे, वो छुपाते थे। चाहे जब तक ये संसार के प्रति हमारा आसक्ति रहेगा, हमें चाहे कितने भी भाव भंगी देखें वो भाव भंगी क्या है, ये चारा आना का बराबर है, हमें कितने भी भाव दिखाए हाँ ये फटेले पात्र के नीचे होल के बराबर है, फटेले पात्र में पानी नहीं रहने वाला है। हाँ उसी प्रकार हाँ संसार के प्रति जब तक हमारा आसक्ति रहेगा हमें कितने भी भक्ति करें वो भक्ति वो फटेले वो होल में निकल जाने वाला है, वो निकल जाएगा, हृदय में टिकेगा नहीं। इसलिए तो ये दशा, इसलिए तो हम भोग रहे हैं। कितने साल हो गया हरिनाम करते करते, कितने साल हो गया भक्ति करते करते। भक्ति इतने शक्तिशाली है, भगवान के नाम इतने शक्तिशाली है, उनको छूते मात्र आग को छूते मात्र ही आग जलाएगा। भक्ति हाँ भक्ति ऐसे ही है, प्रखर अग्नि है, उनको छूते मात्र ही उनका करीब जाने मात्र से ही हाँ वो कितने बड़ा अनर्थ के पहाड़ ढेर हो ना क्यों वो जला करके भस्म कर देगा, वो भक्ति प्रदान करेगा। हरिनाम इतने शक्तिशाली है वो कैसे भी व्यक्ति को शुद्ध करेगा। ले हम क्यों शोध नहीं हो रहे, हमारा भक्ति के जो पात्र है ना, हृदय रूपी पात्र में जो भक्ति रख रहे ना, वो हृदय रूपी पात्र में एक होल है। इसीलिए कितने भी भक्ति कर रहे हैं ना वो पात्र में वो होल हुआ पात्र में निकल जाती है, वो टिकता नहीं है। इसीलिए हमें एज इट इज सालों के पहले जहां पर थे हाँ वहीं पर है, आज भी वहीं पर है, आज भी वहीं पर है। क्यों ये क्यों नहीं होता, मेहनत तो बहुत करते हैं, परिश्रम तो बहुत करते हैं हाँ क्यों हो नहीं पा रहा। इतने तीर्थ में जाकर के, इतने धाम यात्रा, इतने हरिनाम, इतने क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन ये फल क्यों हाथ में नहीं लगती है, फल हमारे हाथ में क्यों नहीं आता है, यही कारण है। कहीं पर तो वीकनेस है, कहीं पर तो हमारा कमजोरी है, यही कमजोरी के कारण हाँ ये चीज को जो रस है भगवान का भक्ति का जो रस है रस को आस्वादन नहीं कर पा, ये रस को हमें हम अधिकारी नहीं बन पा रहे हैं। गृहेशु कुटधर्मेशु पुत्र द्वारा धन अर्थ दी न परंग बिंदते मुड़ा भ्राम्यन संसार बत्मसु। जब तक घर में संसार में पत्नी में बच्चों में बुरा नहीं मानना, ये बात शास्त्र के द्वारा कहा गया है, तो आप लोग ऐसा नहीं कहना हाँ ये लोग आश्रम में रह रहे हैं कि बहुत बड़ा बात बोलते हैं ना। हमें खाली हमें शास्त्र का बात को हमें जो शास्त्र में कहा गया उनको रिपीट करना है, दोहराना है। आप लोग ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हाँ ये लोग ऐसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ऐसे भी एक भक्तों को शास्त्र का जो कहा गया उनको पीटना नहीं चाहिए। ऐसे तो बद्ध जी बहुत कमजोर है, लेकिन शास्त्र के बात को, शास्त्र का जो सार है उनको ऐसे मीठा के रूप में सामने वाले लोगों के सामने प्रस्तुत करें तो मीठा को ले सके, वो मीठा का अधिकारी बन सके। ऐसा नहीं कि शास्त्र में कहा गया है तुम लोग गृहस्थ हो, हाँ क्या ये माया में पड़े हो, पत्नी में पड़े हो, बच्चे में पड़े हो, ऐसा नहीं पीटना। शास्त्र का वाणी को ऐसा पीटना नहीं चाहिए। ऐसा शास्त्र का वाणी बहुत कोमल है, बहुत मीठा है। हाँ, जो साधु पीड़ता है तो साधु का वाणी कैसा होता है, भले पीड़ता है, हाँ साधु का वाणी कैसा होता है, ना गन्ना के जूस के जैसे है। वो पीटा है कि जैसे वो गन्ना को जब हमें एक मशीन में डालते हैं ना, भले वो गन्ना पीस जाता है लेकिन आखिर में पीसा जाने के बाद वो आखिर में क्या देता है, मीठा गन्ना का जूस देता है। भले अपने को पीस देता है, मशीन में पीस देता है, लेकिन आखिर में वो मीठा जूस देता है। ठीक उसी प्रकार एक साधु हाँ अपने वाणी के द्वारा भले वो पीस दे, आखिर में साधु का यही इच्छा रहता है कि उनको मीठा जूस मिले। शास्त्रों की जो मीठा हाँ भक्ति का शास्त्र का जो सार है भक्ति, वो भक्ति इतने सारे शास्त्र का बखान क्यों है। भक्ति तो दो शब्द की है, हरि नाम तो दो शब्द की है, लेकिन ये हरि नाम को समझाने के लिए, हरि नाम को सही रूप में उच्चारण करने के लिए कई सारे शास्त्रों की बात है। रोज नित्यम भागवत सभा इसीलिए करते हैं, ये रस को, ये हरि नाम को सही रूप में उच्चारण करें। हरे कृष्ण महामंत्र तो कितना है, इतना बड़ा लाइन है, लेकिन यही लाइन को समझने के लिए कितना बड़ा शास्त्र की बखान है। रोज हमें भागवत चर्चा कर रहे हैं, आज नहीं 500 साल पहले ये भगवत गीता का ज्ञान हमें सुन रहे हैं, कह रहे हैं, सब कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये संसार के प्रति, धन के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति यदि यही चीज को कृष्ण में केंद्रित करे ना, वो संसार इतने मधुर बन जाएगा। वही संपर्क पत्नी के साथ, वो संपर्क इतने मीठा मधुर बन जाएगा। बच्चों के प्रति वही संपर्क इतने मधुर बन जाएगा ना, तो वहां पर वो गृहस्थ जीवन उनको बंधन कारक नहीं होगा। वो गृहस्थ गृहस्थ में रह करके वैकुंठ का अधिकारी बनेगा, है ना। लेकिन कृष्ण को केंद्रित करके यदि हमें सारे कुछ करते हैं तो फिर हमें बंधन मुक्त होकर के भले कहीं पर रहें वो गृहस्थ एकदम छाती फाड़ करके बहादुर बन करके वो सारा संसार में चलेगा। कोई ये संसार की बंधन माया उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन गृहस्थ के बीच में कृष्ण रहना चाहिए। लेकिन गलती यहीं पर करते हैं, वही चीज को हम भूल जाते हैं, यही चीज को हमें हर कलयुग में हाँ स्वतः भूल कर दे दी है सब। जल्दी अति बहुत कम समय में हमें आसानी से भूल जाते हैं, सत्य को आसानी से हमें भूल जाते हैं और आसक्त हो जाते हैं। और आसक्ति ऐसा एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा खतरनाक चीज है ना, बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि लोगों को भी खत्म कर देती है। विश्वामित्र मेनका में आसक्ति हो गए, गया ना उनका इतना बड़ा तपस्या, जहां पर ऐसे संतों की यह हालत है तो हम कौन सा खेती के मूली हैं, हम कहां हैं, हमारा स्थिति कहां है, हम कहां पे हैं। इस सारे बातों को हमें रोज मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। भक्ति करना है लेकिन विचार युक्त होकर के जो भक्त भी भक्ति करता है तो उनका भक्ति लंबा और वो सही रूप में भक्ति करता है। हाँ, लेकिन ऐसे ऐसे सांसारिक चीजों में हाँ आसक्त होने के कारण, सांसारिक चीजों को हमारे जीवन के ध्येय बनाने के कारण न परंग बिंदते मूढ़ा परंग ऊंचा वस्तु में हमें पहुंच नहीं पाते। बिंदते बंधन नहीं कर पाए, भगवान के चरण कमल का बंधन का अधिकारी नहीं बनते, मूढ़ा, इसलिए भ्रमण करता रहता है। भ्रामयन संसारवत मुसु, सारा संसार में भ्रमण करता रहता है, मूर्ख बन के वो सारा संसार में घूमता रहता है। मतिना कृष्ण, प्रहलाद महाराज कहते हैं ऐसे ऐसे चीजों को हाँ, जब हमें हमारा जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं, ना मति ना कृष्ण, प्रहलाद महाराज के मति, उनका मति कृष्ण में नहीं लग पाता है। ऐसे ऐसे जीवन चीजों को हमें जब जीवन में बुला लेते हैं, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मति न कृष्ण, मति न कृष्ण, कृष्ण में नहीं लग पाता है। मति न कृष्ण परतो सोतो नित्य पोधितो, नित्य भी पोधित, ऐसा कुछ है। गृहव्रतानाम, हाँ, खास करके प्रहलाद महाराज यहाँ पर गृहस्थों का, गृहस्थों के लिए कह रहे हैं। गृहव्रतानाम, गृहव्रत, जो गृहव्रत ले रखे हैं, गृहव्रतानाम मति न कृष्ण स्वतः परतो स्वतः नित्य पोधितो, कितना अपने प्रयास कर लें, या कोई बाहर से आकर के उनको कितने भी धर्म के उपदेश करें, जब तक ऐसे संसार के कहीं पर हमें पड़े हुए हैं, हाँ, हमें कृष्ण भावना अमृत को अमल नहीं कर सकते हैं। अदांत गोवि विसुतां तमिश्रं पुनः पुनः चर्विता चर्वणाम, यहीं पर पड़े रहेंगे, यहीं पर पड़ा रहेंगे जब तक, चाहे कोई भी हो, तो ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, कोई कोई भी व्यक्ति हो, जब तक इस संसार के बातों में मन को लगा रखता है, यहीं पर पड़ा रहेगा, वो जा नहीं सकता। ना परम बिंदते, वो भगवान के चरण कमल को प्राप्त नहीं कर सकता है। लब्ध्वा सोदुर्लभ मेदं बहु संभावन्ते मानुष मर्त्य जीवनम, आज जो अनेक अनेक जीवन बिताने के बाद लब्ध्वा हमें प्राप्त हुआ है, लब्ध्वा मतलब प्राप्त हुआ, मिला है, कितने कितने जीवन बिताने के बाद एक जीवात्मा को सौभाग्यवश मनुष्य शरीर प्रदान प्राप्त होती है। लब्ध्वा सुदुर्लभ इदम बहु संभावन्ते, बहु अनेक अनेक चक्कर, इधर इधर ऊपर नीचे, इधर इधर भटक भटक के जब एक जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, मानुष्य मर्थ, ये मनुष्य शरीर ऐसे एक एक अवसर प्रदान करती है भगवत भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए। ये मनुष्य शरीर शास्त्र में कहा जाता है, बहुत जोर से ये आवाज शास्त्र के द्वारा दिया गया है, मानुष्य मनुष्य ही ये अधिकारी है, भगवत प्राप्ति का, भगवत भक्ति का अधिकारी है। लेकिन हमें क्या करते हैं, अनेक अनेक जीवन बिताने के बाद जब भाग्यवश हमें मनुष्य शरीर मिलता है, बस हमें उसको ऐसे ऐसे बर्बाद कर देते हैं, थोड़ी सी ये संसार की इंद्रिय सुख प्राप्त करने, ऐसे ऐसे उसको बर्बाद कर देते। आप लोग तो कम से कम थोड़ा सा बुद्धिमान बन गए, जैसे कैसे आप लगे पड़े, ये बहुत बुद्धिमानी बात है, और भगवान भी यही वचन देते हैं, जैसे कैसे भी लगे रहो, भले भी सबसे सफल नहीं हो गए ना, फिर मैं आपका उद्धार कर दूंगा। हर व्यक्ति को भक्ति भी नहीं होता है ना, भक्ति भी नहीं होता है ना, किसी भी हालत में किसी भी प्रकार में लगे रहो, भगवान का आश्वासना है, यदि किसी भी प्रकार में लगे रहेंगे तब भगवान हमारा उद्धार करेंगे, लगातार लगे रहना पड़ेगा, ये बात भगवान बताते। और हमें जो इतने इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए संसार में इतने मेहनत कर रहे हैं, भगवान ने जो हमें हमारा जीवन में जो जितना सुख मिलेगा उनको पहले से निर्धारित कर दिया है, हमको जितना सुख मिलने वाला है भगवान ने पहले से निर्धारित कर दिया है। सुखम इंद्रियकं दयित्वा देहो योग ने दैनं सर्वत्र लभ्यते, प्रारब्ध के कर्म के अनुसार चाहे वो जीवात्मा कोई भी जोनी में जाए, कोई भी शरीर में जाए, प्रारब्ध कर्म फल के अनुसार उनको जितना सुख मिलने वाला है वो मिल करके ही रहेगा। तो प्रयास न करते, प्रहलाद महाराज कहते हैं उसके लिए प्रयास क्या करना है, तो प्रयास न कर्तव्य, ये कर्तव्य नहीं है, इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करना ये कर्तव्य नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि दुख दुख के विरुद्ध में लड़ना और ये सुख के लिए प्रयास करना ये केवल समय की अपचय मात्र है। दुख के विरुद्ध में लड़ना और सुख के लिए प्रयास करना ये केवल समय की अपचय मात्र है, प्रभुपाद जी बताते। तो फिर किसके लिए प्रयास करना है, खेमं मुकुंद चरणा अंबुजम, मुकुंद खेमं उसको प्राप्त करने के लिए, मुकुंद जो हमें ये भव प्रवाह के भवबंधन से मुक्ति दे, भवबंधन से मुकुंद भवबंधन से मुक्ति दे, ऐसे खेमंग ऐसे मुकुंद के चरण कमल को, खेमंग मुकुंद चरण अंबुजम, भगवान के चरण अंबुज को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। इसीलिए कुलशेखर अड़वाल महाराज भगवान के चरण कमल के स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हैं, मुकुंद मुद्रो प्रणिपात यासे भवंतम एकांतम इथंतम अर्थम अविस्मृत त्वत चरण अरविंद, अविस्मृत त्वत चरण अरविंद भवे भवे में अस्तु भवत प्रसाद। कुलशेखर अड़वाल भगवान के चरण कमल में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु सर झुकाकर आपके चरण में मैं स्तुति करता हूँ, भवंतम इथंतम एकांतम इथंतम एक ही चीज की इच्छा रखते हुए अविस्मृत त्वत चरण अरविंद, मैं आपके चरण कमल को कभी ना भूलू, अविस्मृत आपके चरण कमल को मैं कभी ना भूलू, चाहे भवे भवे जन्मे जन्मे कृपा के रूप में आशीर्वाद के रूप में मुझे आप यही वरदान प्रदान कीजिए, यही आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके चरण कमल को कभी ना भूलू। इस ये भक्ति के प्रसंग में निषाद महाराज कहते हैं, जब से इस श्रीराम मुझे अपने गला में लगा लिया तब से मैं ये पृथ्वी का भूषण बन गया। निषाद राज कहते हैं जब से इस श्रीराम मुझे अपने गला में लगा लिया तब से ये पृथ्वी का मैं भूषण बन गया। और सारे जितने भी संसार के भीतर बड़े बड़े भक्त बने हुए हैं ना, सबका मांग यही है, प्रभु मुझे आपका भक्ति में रहने दीजिए, आपके दासों के भक्ति में रहने दीजिए। प्रहलाद महाराज ने यही कहा, भगवान नरसिंहदेव जब उनको वर देने के लिए कहें तो प्रहलाद महाराज ने यही स्तुति की है कि प्रभु आपके दासों ये नारद मुनि के सेवा में मुझे रहने दीजिए, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता हूं, मुझे नारद मुनि के सेवा में रहने दीजिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझे नारद मुनि के सेवा में रहने दीजिए। तो भगवान और भगवान के भक्त के सभा में जब तक रहेंगे तो फिर आप कहीं पे भी रहो वो नर्क भी आपको वैकुंठ की सुख प्रदान करेगा, कहीं पे भी रहो, घर में रहो कहीं पे रहो, हाँ वो जगह आपको अमृत तुल्य बोध होगा। तो ये हमें करना है, नहीं तो ये हनुमान ये बंदर का झूठन कौन खाएगा। ये हनुमान यदि भगवान श्री राम के साथ नहीं जुड़ा जाता तो आज हमें कह रहे हैं हनुमान हमें जाकर के बजरंग बली प्रसाद बंदर का झूठन कौन खाएगा। लेकिन ये बंदर भगवान राम के साथ जुड़ गया करके बजरंग बली के प्रसाद पशु है, कोई भी जुड़ता है ना भगवान के साथ उनका जीवन धन्य हो जाता है, चाहे कैसे भी हो कितने पापी हो अभी चेत सुधराचर चाहे कितने भी कुछ भी हो भक्ति उनको शुद्ध कर देता है। भगवान का भक्ति उनको सारे पापों से सारे कलमोश से उनको मुक्त करा देता है। कल के श्लोकों से हमें पढ़ रहे थे हर समय असुरों और भक्तों में एक प्रकार का टकराहट होती है। एक समय ऐसा हुआ असुरों ने इतना मारे इतने काट किए इतने हान काट किए तो कई देवताओं धराशायी हो गए, कई देवता लोग जीवित नहीं रहे, कई देवता लोग मर गए। उस समय दुर्भासा जी का साप हुआ था, जब इंद्र ऐरावत के ऊपर चढ़ करके आ रहा था तो सामने आए हुए दुर्भासा जी जब देखे कि इंद्र ऐरावत के ऊपर है तो दुर्भासा जी को बड़े खुश हुआ और खुशी से अपने गले में वो जो भगवान के प्रसाद का माला पहने हुए थे तो माला को उतार करके इंद्र के गले में डाल दिया। हाँ अब इंद्र ने सोचा ये क्या है, मैं ऐरावत हस्ती के ऊपर हूँ, मैं स्वर्ग की राजा हूँ, ये क्या ये पहना दिया ये, तो उठा कर तुरंत तो वो ऐरावत के ऊपर सूंड के ऊपर ऐरावत के ऊपर छोड़ दिया। और जहां पर इस स्वर्ग की राजा स्वर्ग के इतने बड़े व्यक्ति वो भगवान के प्रसाद माला को नहीं समझ रहा है, वो तो पशु है वो क्या समझेगा, वो लिया अपने पैर में रखा और कुचल दिया। अब खड़े खड़े सामने खड़े खड़े दुर्भासा जी उस सारे घटना को देख रहे हैं, तुरंत वो साफ दे दिए जाओ तुम दरिद्र हो जाओ। जब ये होती संसार में कोई ऐश्वर्यवान बन जाता है ना तो फिर वो किसी का परवाह नहीं करता है, यही बात स्वर्ग के राजा इंद्र को भी लग गया। तो कुछ अपुलेंस कुछ आ जाता है ना भौतिक ऐसे आ जाता है तो फिर हम की मानते नहीं है। तो समझना चाहिए ये भौतिक जो ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य जो है ना ये हमारा पतन के कारण है, भक्ति को भक्ति से हमको पतन करा देता है। इसीलिए प्रभुपाद जी वहां पर लिखते हैं बताते हैं जब कोई व्यक्ति की व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य आता है ना तो फिर जब वो संतों का आदर नहीं करता भक्तों की सम्मान नहीं करता है ना तुरंत उनका पतन हो जाता तुरंत। नौस महाराज कई कई लोग पतन हो गया है ना, नौस महाराज के जीवन में देखे ना पतन हो गया है ना। तो संतों की आदर जब जीवन में ये ऐश्वर्य भी एक प्रकार का खतरा है, इसीलिए हमें ऐसे स्थिति में बड़े सावधान होना चाहिए। और जब संसार के भीतर असुरों की संख्या बढ़ जाती है ब्रह्मा को बड़ा चिंता हो जाती है, और इस समय ये असुरों ने उनको फुसला रहे हैं, अरे क्या कर रहे महाराज आप क्या कर रहे हो, उठो हाँ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ हम भी आपका साथ देंगे। तो इस प्रकार ही असुरों की प्रताप से जब संसार अथय हो जाती है ना ब्रह्मा को बड़ा चिंता हो जाती है, ब्रह्मा जी चिंतित में हो जाते हैं कि असुर लोग ये धरती पर क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, उनके उनका विश्व कल्याण कैसे, वो लोग उनका चिंता में नहीं रहता, वो कैसे इंद्रिय तृप्ति किया जाए। लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं देवता लोग जो होते हैं वो जीव की कल्याण के विषय में सोचते हैं, इसीलिए लोकानाम हित कारिणे लोगों की हित करने के लिए रूप गोस्वामी पाद जी ने प्रधानमंत्री के पद को छोड़कर चले गए ना, लोकानाम हित कारिणे प्रभुपाद जी ने यही किया है ना। भगवान नित्यानंद ने जब भारत भूमि में प्रकट हुए थे, भगवान नित्यानंद का जो भारत भूमि में भगवान नित्यानंद जो भारत भूमि में आविर्भाव हुए थे उतने पति तो आत्माओं के पास पहुंच नहीं पाए थे जितना प्रभुपाद ने पहुंच गए थे। भगवान नित्यानंद जगह माधारी को प्रभुपाद जी अक्सर ही बात को कहा करते थे। हाँ तो भगवान नित्यानंद ने दो जगाई माधाई को उधार किए थे, लेकिन अभी तो जगाई माधाई में संसार भरे पड़े हैं। और प्रभुपाद जी अपने शिष्यों की चुनाव इस जगाई माधाइयों के साथ किया करते थे। हाँ इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये हरे कृष्ण महामंत्र वितरण करते समय हाँ ये खतरा को अपने जीवन में उठाते थे, कोई भी मेरे जीवन में कोई भी जगाई माधाई आ सकते हैं, इसलिए वो हमेशा बद्ध जीव के प्रति दयालुता दिखाएं प्रभुपाद जी ने। तो भगवान नित्यानंद इतने पतितो आत्माओं के पास नहीं पहुंच पाए थे जितना पतितों का उद्धार श्रील प्रभुपाद जी ने किया। और भगवान नित्यानंद ने तो प्रभुपाद जी को अपने माध्यम के रूप में इस संसार को भेजे थे, और गौर निताय के संयुक्त कृपा विग्रह के रूप में श्रील प्रभुपाद जी ये संसार में प्रकट होकर के सारे संसार को भगवान का जो प्रेम है वो वरदान के रूप में दिया। भगवान का जो प्रेम है कृष्ण प्रेम है वो कृष्ण प्रेम को सारा संसार को वरदान के रूप में प्रदान की श्रील प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी जब नैरोबी में प्रचार कर रहे थे, नैरोबी के प्रचार करते समय एक घटना हुआ था उनके जीवन में। तो अपराह्न के समय प्रभुपाद जी स्नान करने के बाद वो धोया हुआ कपड़ा पहनते थे, और एक बार प्रभुपाद जी स्नान किए और आए जो कपड़ा धोया हुआ कपड़ा रेडी नहीं था, तो ब्रह्मानंद स्वामी को पूछे, तो ब्रह्मानंद स्वामी को प्रभुपाद मैं आपका कपड़ा को यहाँ पर सुखाया था लेकिन कौन ले गया पता नहीं है। तो प्रभुपाद जी ये बातें को झेल लिए, और जब शाम हुआ प्रभुपाद जी के जो नैरोबी में जो स्कन है वहां पर शाम को भगवद गीता के जो प्रवचन करने बैठे, जब प्रभुपाद जी व्यासास में बैठ करके भगवद गीता के ऊपर कुछ बोल रहे थे, ठीक सामने कुछ अफ्रीकन लड़के लोग तो एक उनका चादर को पहना हुआ था, एक प्रभुपाद जी का धोती को पहन रखा था, और एक प्रभुपाद जी का कुर्ता को पहन रखा था। तो प्रभुपाद जी जो बोलने कर रहे थे ये अफ्रीकन लड़के लोग ऐसे ही प्रभुपाद जी का वस्त्र पहन रखे थे। आप प्रभुपाद जी बगल में जो बैठे थे ब्रह्मानंद स्वामी को ध्यान को वो जगह पर दिलाए, तो फिर ब्रह्मानंद स्वामी वहां गए, वो तीनों अफ्रीकन लड़के को बुलाए और सब कपड़े को प्रभुपाद जी का जो कपड़े को उतारे। तो प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत आंदोलन को जो प्रचार कर रहे थे, कई 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 ऐसे ऐसे बातों में, लेकिन शुद्ध भक्त होने के नाते और उनके ही हृदय के भीतर बद्ध जीवों के प्रति इतने करुणा, इतने उनके भीतर बद्ध जीवों की दयनीय स्थिति को देख करके उनके भीतर इतने दया उमर उठा। सारे ऐसे वो अवस्था में 70 साल उस अवस्था में कई बार वो पृथ्वी को घूम रहे थे, कई बार वो पृथ्वी का परिक्रमा कर रहे थे। तो आज के श्लोकों में श्री सुखदेव गोस्वामी ने यही बात को बताया, भगवान कहाँ मिलेंगे ना, जहां पर ब्राह्मण है, जहां पर गौ है, गाय है, जहां पर वेद है, जहां पर धर्म है, वही जगह भगवान कहते हैं मैं कहां पर हूं ना, जहां पर ब्राह्मण होता है, जहां पर गाय होती है। लेकिन आज गाय का दशा क्या होती है, क्या होती है? ऐसे गाय का दूध जो पीता है ना, तो गाय का दूध का प्रभाव हमारे शरीर में, हमारा शरीर में 5 दिन तक रहता है, अन्न 7 दिन तक रहता है, अन्न का प्रभाव हमारे शरीर में 5 दिन तक रहता है, और गाय का जो दूध है वो दूध का प्रभाव 7 दिन तक रहता है, और दूध का प्रभाव 20 दिन तक रहता है, और घी का प्रभाव 1 महीना तक रहता है, और गाय का जो सिंह है हाँ तो सारा शरीर में तो कई बैठे हुए हैं, देवता लोग बैठे हैं, और गाय का सिंह में शंकर जी बैठे रहते हैं, विष्णु जी बैठे रहते हैं, गाय का गोमूत्र में कौन रहते हैं, गंगा, गोबर में लक्ष्मी, ऐसे गाय के अंग प्रत्यंग में ऐसे सारे देवता लोग बैठे हुए रहते हैं। अब ऐसे गाय के ऊपर आज कितने अत्याचार हो रही है, ब्राह्मण दशरथ महाराज के पुत्र श्री राम पिता का आदेश लेकर के जब वनवास में थे, ठीक उसी समय उनके जीवन में घटना हो गया था, और भगवान राम और पत्नी सीता भाई लक्ष्मण के साथ ऐसे जंगल में इधर उधर जा हो रहे थे, तीर्थ मुनियों के जंगल में जो तपस्वी लोग हैं, मुनि लोग हैं, उनके साथ में कई तीर्थ भ्रमण कर रहे थे। तो एक बार एक तीर्थ कुछ मुनियों के साथ वो तीर्थ कर रहे थे, और वो तीर्थ में जाकर के संध्या हुआ, शाम हुआ, वहीं पर वो सो गए, और जब सो गए तो रात्रि के अंतिम पहर में उन्होंने अपने स्वप्न में एक चीज को देखे। रात्रि के अंतिम पहर में भगवान राम के स्वप्न में दशरथ महाराज आए, जब दशरथ महाराज आए और कोई लोग आए थे अयोध्या के और कोई पुरवासी आए थे, तो सुबह हुआ और भगवान राम उठे, उठ करके वो सारे मुनि ऋषि लोगों को ये स्वप्न की बातें कहें कि देखो रात्रि के अंतिम पहर में मैं मेरे पिताश्री को दर्शन किया, मेरे पिताश्री मेरे स्वप्न में आए थे। जब भगवान राम ऐसे कह रहे थे तो सारे संतों ने, सारे मुनि ऋषि लोगों ने कहने लगे, जब अंतिम प्रहर में मृत व्यक्ति कोई पुत्रों के स्वप्न में आता है तो पुत्रों का कर्तव्य होता है वो पिता का वो पिता को श्राद्ध दे। रात्रि के अंतिम प्रहर में जो कोई पुत्र के स्वप्न में पितर लोग आते हैं तो वो पुत्र का कर्तव्य होता है तो पितरों को श्राद्ध दे। तो सारे मुनि ऋषि लोग ने कहने लगे कि आप अपने दशरथ महाराज जो पितर लोग हैं आप उनको श्राद्ध दो। तो मुनि ऋषि लोगों का आदेश लेकर के भगवान राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को आदेश दिया, जाओ और वहां समय वो समय भगवान राम के साथ मार्कंडेय जो थी, मार्कंडेय ऋषि वहां पर मार्कंडेय थे, और गौतम ऋषि, लोमस ऋषि थे, भरद्वाज ऋषि थे, और कई सारे ऋषि लोग वहां पर सप्तर्षि ऋषि लोग थे। तो मार्कंडेय जी बोले देखो तो आप सारे ऋषि लोगों को, मुनि ऋषि लोगों को बुलाइए और उनको अपने पितरों की प्रीतार्थ प्रसन्न करने के लिए उनको भगवान विष्णु के नैवेद्य प्रदान कीजिए। तो भगवान राम सारे ऋषि लोगों को बुलाए और लक्ष्मण जी जंगल से कई पक्के पक्के मीठे मीठे फल लेकर के आए। तो मुनि ऋषि लोग स्नान करके आ गए और लाइन में पंक्ति में बैठ गए, और दशरथ महाराज भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण सारे मुनि ऋषि लोगों को प्रसाद, भगवान विष्णु के प्रसाद अर्पण करने लगे। अर्पण कर रहे थे, जब सीता जी वहीं पर खड़े हुए थे, तो जब भगवान राम और लक्ष्मण सारे ऋषि लोगों का सेवा में जुटे हुए थे, तो लगे सारे प्रसाद अर्पण कर रहे थे लगे हुए थे, तो वो समय सीता जी अंदर चले गए। और सारे ऋषि मुनियों का सेवा करने के बाद भगवान राम जब अंदर गए, हाँ, तो भगवान राम ने सीता जी को पूछे, अरे आपने ये क्या किया, हम दोनों भाई ने सारे ऋषि लोगों का मुनि ऋषि लोगों का सेवा में लगे हुए थे, आपको भी हमारा साथ देना चाहिए था ना, आप भी थोड़ा सेवा करना था ना, आप अंदर क्यों आ गए। तो भगवान राम जब इस प्रकार का पूछे तो सीता जी कहने लगे, आप जब आप पितरों के उद्देश्य से ऋषि मुनियों का सेवा कर रहे थे, ठीक उसी समय आप ये हर ऋषियों मुनियों के पीछे, हाँ, एक ऋषि के पीछे शरीर में दशरथ महाराज सटे हुए थे, हाँ, और एक ऋषियों के पीछे और आपका और कोई पितर सटे हुए थे, तो स्वर्ग से आपका ये सारे पितर लोग आकर के ये मुनि ऋषियों के शरीर में सटे हुए थे, और हाँ ये ऋषि मुनियों के द्वारा वो भगवान का नैवेद्य को ग्रहण करे। तो इसीलिए मैं क्या, हाँ, ये ससुर जी के सामने, दशरथ महाराज ससुर जी के सामने मैं उपस्थित रहना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए हाँ मैं अंदर आ गया। तो ये बात जब, क्योंकि ये बात को जब ऋषि मुनि लोग को राम भगवान राम और लक्ष्मण परस रहे थे, विष्णु नैवेद्य अर्पण कर रहे थे, तो दशरथ महाराज जिन्होंने उनके पितर लोग वो ऋषि मुनि ब्राह्मण के द्वारा अपने पुत्रों के हाथों से वो भगवान विष्णु का प्रसाद को ग्रहण कर रहे थे, इसीलिए श्राद्ध के समय गृहस्थ लोग ब्राह्मण लोगों को बुलाते हैं, बुला करके श्राद्ध पक्ष में हाँ ये विष्णु प्रसाद अर्पण करते हैं। ये देखिए शास्त्र में ये बातें कहा गया है, यही बात भी हमारे आचार्य आदित्य आचार्य ने भी किए थे। तो पितरों को तृप्त करना है तो ब्राह्मण को बुला करके यदि विष्णु नैवेद्य अर्पण किया जाए तो ब्राह्मण के मुख के द्वारा ये नैवेद्य ये विष्णु प्रसाद वो पितरों के पास पहुंच जाता है। और जब पितरों को ये विष्णु नैवेद्य विष्णु प्रसाद पहुंच जाता है, पितरों चाहे वो कितने बड़ी दुर्गति में कैसे कैसे भी गति में पड़े होते हुए ना, तो जैसे विष्णु प्रसाद वो लोग को मिल जाता है ना, तुरंत वो लोग तर जाते, तुरंत वो लोग का वहां से उधार हो जाता है। हाँ, तो ये बात हाँ भगवान राम ने भी और भगवान सीता जी भी हाँ ये बात को कह करके हाँ हर गृहस्थों को इस प्रकार का एक प्रकार का श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मणों के प्रति जो सत्कार है, हाँ आज ब्राह्मण अगर ब्राह्मण है क्या नहीं होता तो फिर धर्म नहीं टिकता। ब्राह्मण के ब्रह्म बल के द्वारा कूद तो कहीं पर तो है, प्रभुपाद जी ने बल दिए हैं, हाँ तो मेरे शिष्यों के भीतर ऐसे सुकृति है। एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया, ओ स्वामी जी आपका शिष्यों का पहचान क्या है, तो प्रभुपाद जी ने वो लोगों को जवाब दिए थे कि मेरे शिष्यों की जो सदाचार है, वो सदाचार जो पालन करते हैं, उनका जीवन की जो सदाचार है, ये सदाचार पालन से तो आप लोग पता कर लोगे ये लोग मेरा शिष्य है। जब जीवन में सदाचार पालन किया जाता है तो धर्म वहीं पर वो जगह को छोड़ नहीं पाता। एक कुछ दिन पहले प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में भी वैष्णव वो है जो सदाचार पालन करता है, बिना सदाचार पालन करते हुए हृदय में भगवान का दर्शन नहीं हो पाती है। इसीलिए वैष्णव को भक्तों को सदाचार हाँ वो चीज को हाँ निभाने में कोई कभी भूलना नहीं चाहिए। हाँ तो ये हाँ ये बात को स्वयं भगवान राम और बड़े बड़े आचार्य लोग भी ये करके हमें भी शिक्षा देते हैं। निकट में जन्माष्टमी है, भगवान के जन्मदिन में जो भी कोई व्यक्ति हाँ सेवा करेगा तन मन धन से भगवान का जन्मदिन में, और जो भी करते तो करते हो, नहीं विशेष करके भगवान का जन्मदिन में जो भी कोई भगवान का सेवा करेगा तब भगवान उनको जन्म मृत्यु चक्र से छुड़ा लेते। जो भी कोई व्यक्ति भगवान का जन्मदिन में भगवान का सेवा करेगा ना तो भगवान को जन्म मृत्यु चक्र से पार करा देते हैं। और हमें ऐसा तैयार करना चाहिए हाँ, तो हम देवकी का जो छह पुत्र है वो छह पुत्र किसके साथ तुलना किया गया है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य छह, ये छह को देवकी के छह पुत्र के साथ तुलना किया गया। तो यही छह पुत्र को हर वध जीव अपने हृदय में पाल पुष के रखा है, पुत्र की भांति हर वध जीव ये काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य अपने पुत्र की भांति पाल पोष करके रखा है। खाली जो भगवान देवकी के हृदय में जन्म लिए थे, वसुदेव के हृदय में जन्म लिए थे, ये बात नहीं है। यदि ये हाँ ये जो पुत्रों की भांति ये काम क्रोध लोभ मोह को पाल पुष के रखे हैं, ये वो पुत्रों को यदि हमें बध कर दे हाँ तो निश्चित रूप से तो भगवान भी हमारे हृदय में जन्म लेंगे, भगवान भी हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। वास्तविक जन्म उत्सव मनाना वही सार्थक है जब भगवान हमारे हृदय में आकर के जन्म लेते हैं। नहीं तो क्या ही जन्माष्टमी हमें मना लिए, क्या है क्या है क्या है। लेकिन जब तक भगवान हमारे हृदय में जन्म नहीं लेते हैं, जब तक हमें हृदय में जन्म महामहोत्सव नहीं मना लेते हैं, कितने जन्माष्टमी मना ले क्या फर्क पड़ जाएगा। तो हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए मेरे हृदय में जन्म उस समय मना, मेरे हृदय में मैं जन्म उस समय मना, बाहरी नहीं। बाहरी में तो मनाना है, बाहर तो क्रियाकलाप करना है, बाहर करने के साथ साथ भी अंदर भी क्रियाकलाप होनी चाहिए। फिर बाहरी तो वो जैसे मनोरंजन लोकरंजन हो जाएगा, दिखावा हो जाएगा। बाहर का करना है, मना नहीं है। बाहर का करेंगे तो शुद्धि होगा, बाहर करते करते अंदर हो, अंदर की के प्रति हमें ध्यान देना चाहिए। तो यही बात को आज के श्लोकों के द्वारा प्रसंग के द्वारा श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने कहे थे, ये कंस सुधर रहा था लेकिन उनके चापुर सी किए ये चेले चमचे लोग, फिर वो अपने भक्तों को भगवान के भक्तों को सताने लगा, भगवान के भक्तों को हैरान करने करना लगा। ब्रज को कई सारे असुरों को छोड़ भेजा, भेज करके ब्रजवासियों को ब्रज के भक्तों को सताने लगा। आप लोग सुने हो ना, भगवान एक बार ये छोड़े थे और अपने भगवान एक बार अपने ग्वाल बालकों के साथ और बलराम जी के साथ कालिंदी के तट पर ऐसे खेल रहे थे। अचानक अघासुर करके एक असुर आया और आकर के एक कोस तक लंबा, एक कोस लंबाई तक अपने शरीर को फैला करके इतना बड़ा मुंह खुला करके वो लेटा रहा, पड़ा रहा। और दूर से जैसे लग रहा था ये मानो एक बहुत बड़ा पर्वत है, पहाड़ है। और सारे ग्वाले बालक जो थे मजाक करते करते ताली बजाते सारे ग्वाल बालक गाय बछड़ों के साथ वो अघासुर के मुंह में चले गए। जब सारे चले गए तो कृष्ण बलराम भी वो भी अघासुर के मुंह के भीतर चले गए। जब सारे चले गए सारे देवता लोग हाहाकार करने लगे और दैत्य लोग खुशी मनाए, दैत्य लोग खुशी मनाए लेकिन सारे देवता लोग हाहाकार करने लगे। जब सारे देवता लोग के लोगों में हाहाकार मच गया तो भगवान कृष्ण अघासुर के भीतर अपने विश्व रूप को प्रकट किए और अपने विश्व रूप को इतने बढ़ाए तो अघासुर का जो सर है वो सर फूट करके उनका प्राणवायु निकल गया। जब प्राणवायु सर फूट करके निकल गया अघासुर का तो भगवान अघासुर के मुंह हो करके और अपने ग्वाल मित्रों के साथ बाहर निकल आए और अघासुर का विषाक्त प्रभाव के द्वारा जो भी ग्वाले जीवित नहीं रहते उनको जीवित करा दिए और पुष्प वृष्टि किए देवता लोग। और अचानक वहां पर एक चीज दिखाई पड़ा तो अघासुर जैसे राक्षस दैत्य उनका शरीर से मरने की मृत्यु के बाद उनका शरीर से एक ज्योति निकला और ये ज्योति भगवान श्री कृष्ण के में आकर के समा गया। तो वहां पर एक प्रश्न हुआ है कि ये इतना बैर बांधने के लिए असुर आया था, मारने के लिए आया था, तो ऐसे असुरों का शरीर से ज्योति आकर के भगवान श्री कृष्ण के शरीर में कैसे समा, कैसे ये हुआ। तो वहां पर नारद जी ये बात को बताते हैं कि ये अघासुर पहले शंखासुर का पुत्र था, शंखासुर करके एक असुर था, उसका पुत्र था अघ। ये अघासुर अपने जवान के अवस्था में और ये अघासुर इतने अपने जवान के अवस्था में इतने सुंदर था दूसरा कामदेव के रूप में दिख पड़ता था। कामदेव कितने सुंदर है। तो ये अघ शंखासुर का पुत्र अघ जवान अवस्था में दूसरा कामदेव के रूप में दिख पड़ता था और अपने जौवन के सौंदर्य में इतना महत्व वाला हुआ था। एक बार इधर उधर घूमते हुए तो घूम रहा था, सामने से अष्टवक्र ऋषि आ गए। तो अष्टवक्र ऋषि सामने आए तो ये अघासुर क्या कहने, अरे हंसने लगा, अष्टवक्र ऋषि के ऊपर हंसने लगा। हंसते हंसते आप कहने, अरे ये किसने कुत्सित रूप है, कहने लगा। आज जब कुत्सित रूप कह दिया तो अष्टवक्र ऋषि ने वहीं पर अघ को साप दे दिया, अघ को वहीं पर साप दे, जा तुम इतने सुंदर दिख रहे हो ना, जा तुम सर्प बन जाओ। सर्प बन करके वो भूमंडल में विचरण करे। आ सर्प ही भूमंडल के ऊपर बड़े कुत्सित, उनको देखना नहीं होता, सांप का नाम सुनकर के हम डर जाते हैं, इसलिए सांप को कभी स्मरण नहीं करना चाहिए। जैसे सांप को स्मरण करोगे ना तो सांप कहीं होगा ना आपके पास आ जाएगा, इसलिए सांप को कभी याद नहीं करना है। और सांप है ना ये संसार में कुटिल गति में भागता रहता है, अब बड़े कुत्सित क्रूर चेहरा है, देखना इच्छा नहीं होता। तो अष्टवक्र ऋषि ने अघ को साप दे दिया कि जाओ तुम सांप बन जाओ। तो यही शंखासुर के पुत्र अघ क्योंकि इतने सुंदर था तो, और जब वो सांप मिल गया वो बड़े दुखी हो गया और अपने गलती का एहसास करते हुए तो अष्टवक्र ऋषि के चरण में गिर पड़ा और अपने गलती के लिए माफी मांगा। बड़े विनती होकर के जब दयनीय हो रहा था तो अष्टवक्र ऋषि में बड़ा दया उत्पन्न हुआ। तो ठीक है जाओ, भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर में लीला करने के लिए आएंगे तो भगवान आपका उद्धार कर देंगे। भगवान को जब अपने गर्भ में ले लोगे तो भगवान आपको उद्धार कर देंगे। उसी प्रकार और एक था बकासुर, और एक असुर था बकासुर। जब भगवान एक ऐसे में अपने मित्रों के साथ बलराम जी के साथ ऐसे खेल कर रहे थे तो अचानक सामने से बकासुर आ गया। और इसलिए लीला थोड़े हमें क्योंकि आज के प्रसंग के साथ जुड़ा हुआ है किस प्रकार कंस और कंस के अनुयायी लोग भगवान के भक्तों को हैरान सताने लगे। तो ये बकासुर आया और आते ही वो क्या करने लगा बकासुर ने बहुत बड़ा रूप बना दिया और उनका जो शरीर का ऊंचाई था वो स्वर्ग तक छुआ हुआ था। उनको टांगे इतने बड़े बड़े था और उनका चोंच वज्र जैसे था। और ये बकासुर का ये देख करके सारे ग्वाले वाले डर गए और भागने लगे और बकासुर सामने कृष्ण को देखते ही वो निकल गया। अरे जब भगवान बकासुर के अंदर चले गए तो सारे सब परेशान हो गए और ग्वाले वाले रोने लगे और मूर्छा होकर के जमीन में गिर पड़े। सारे ग्वाले बालक मूर्छा होकर जमीन में गिर पड़े। और जब इस प्रकार का हुआ तो स्वयं इंद्र वहां पर आकर पहुंच गए और अपने वज्र चला दिए। और ये बकासुर के ऊपर इंद्र का वज्र जब पहुंचा तो उनका थोड़े समय के लिए जमीन में गिर पड़ा और थोड़े समय के बाद वो झाड़ के उड़ कर खड़ा हो गया। आ फिर ब्रह्मा जी आ गए, अपने ब्रह्मदंड चला दिए। आ ब्रह्मदंड लगने के बाद ये बकासुर जमीन में गिर पड़ा। दो घड़ी तक मूर्छा होकर के जमीन में गिर पड़ा और दो घड़ी के बाद फिर उड़ गया। उसके बाद शिव जी आए अपने त्रिशूल लेकर के, शिव जी अपने त्रिशूल छोड़ दिए बकासुर के ऊपर और शिव जी का त्रिशूल लग करके बकासुर का एक पंख कट गया। फिर वायुदेव आए, फिर जमराज स्वयं आए, जमराज का जमदंड तो टूट गया। जमराज जब अपने जमदंड चला दिए तो जमराज का जमदंड टूट गया। उसी प्रकार कई सारे देवता लोग अपने अस्त्र छोड़ दिए, ये कुछ काम का नहीं आया। और बकासुर सारे देवताओं को खेदड़ने लगा। जब खेदड़ रहा था तो वहां पर ब्रह्मर्षि राजर्षि जो मुनि ऋषि लोग थे तो फिर भगवान को आशीर्वाद दिए। जब ब्रह्मर्षि मुनि ऋषि तपस्वी लोगों का आशीर्वाद मिला, भगवान भी ब्रह्मर्षि तपस्वी मुनि लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं, इसीलिए वो राजस्व यज्ञ में तो मुनि ऋषि लोगों का चरण पखार रहे थे, यही सेवा लिए थे युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ में भगवान ने ब्राह्मणों के चरण धोना, भक्त का सेवा भगवान ने लिए थे। तो इस प्रकार ब्राह्मण का सेवा ना आशीर्वाद जब मिला तो भगवान ने क्या किए, वो बकासुर के भीतर अपने रूप को बढ़ाए, और जब बढ़ाए तो उनको धारण नहीं कर पाया, बक ने धारण नहीं कर पाए, वो उगाल दिया। जब उगाल दिया बक ने, जब उगाल दिया तो भगवान ने उनका पूंछ को पकड़ ले, घुमाए घुमाए जमीन में पटक दिए, और मार खा के भगवान के हाथ से वो ऐसे ऐसे करके उठा, उठ करके फिर वो अपने चोंच में भगवान को डंसने लगा। तो भगवान ने दो चोंच को पकड़े दो हाथ में, ऐसे हाथी जैसे एक थोड़ा सा कुछ लेकर के फाड़ देता है ना, तो भगवान उसको दो टुकड़ा करके दो तरफ फेंक दिए। हाँ, तो वहां पर बकासुर का मृत्यु हो गया, और बकासुर के शरीर से भी एक ज्योति आया, ज्योति आकर के भगवान का शरीर से समा गया। तो वहां पर भी प्रश्न होती है, नारद जी उनका जवाब देते हैं कि बकासुर कौन था, इतने बड़े शत्रुता करने के बाद भी उनका शरीर का जो शक्ति है वो भगवान में समा गया, वो कौन था वो व्यक्ति। तो वहां पर नारद जी जवाब देते हुए कहते हैं, ये हयग्रीव करके असुर था, ये हयग्रीव का पुत्र था, क्या नाम था, उत्कल। हयग्रीव का पुत्र का नाम था उत्कल। ये उत्कल एक बार सारे देवताओं को परास्त करके इंद्र का छत्र को छीन लिया था, छत्र को इंद्र का, सारे देवता को परास्त करके इंद्र का छत्री को, छत्र को छीन लिया था, और ऐसे घूम रहा था, और एक समय घूमते घूमते वो गंगा यमुना के संगम में पहुंचा, और पहुंच करके जब पहुंचा वहां पर वो तट पर जजाली करके एक सिद्ध महात्मा वही तट पर अपने आश्रम बना करके तप कर रहे थे। तो वहां पर ये जो उत्कल हयग्रीव का पुत्र उत्कल, वो घूमते घूमते वहां पर जाके पहुंचा। पहुंच करके वो बनीस कुछ लगा करके वो पानी में डाल रहा था, मछली को पकड़ रहा था, तो जजाली तो महात्मा जो थे वो उत्कल को मना किया, ऐसे नहीं करो। लेकिन ये उत्कल ने माना नहीं, जजालिक ऋषि का बात सुना नहीं। जब सुना नहीं तो जजालिक ऋषि ने साफ दे दिया, जा तू मछली पकड़ने में इतने और मछली पकड़ने में इतने दिखा रहे हो ना, साफ जा, तुम बक बन जा। तो जजालिक महात्मा के हिसाब से उत्कल बक बन गया, बहुत सुंदर था, लेकिन तुरंत बगुला बन गया। अब बगुला जब बन गया तो उनका होता है, अरे मैंने क्या कर दिया, ये महात्मा के आदेश के प्रति अवहेला कर दिया, सुना नहीं। तो तुरंत वो जजालिक मुनि के चरण में गिरा और बड़े विनती किया, आप तो महासंत हो, महात्मा हो, सहज आपके हृदय में करुणा होती है, आप तो मान अपमान जय विजय ये सब का देखते नहीं हो, मेरे द्वारा कुछ गलती हो गया है, आप जब कृपा करते हो आपके कृपा से इंद्रलोक क्या वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाता है, आपके कृपा से धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या स्वयं भगवान भी मिल जाते हैं, आप इस संत की कृपा से ये संसार कौन सा ऐसे वस्तु है जो कि वो व्यक्ति के लिए दुर्लभ है। तो इसी प्रकार वो जजालिक संतो महात्मा का गुणगान किया। तो जजालिक जी संतम ऋषि जी मत खुश प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के वो उनको आशीर्वाद दिए, जाओ भगवान कृष्ण जब आएंगे तो उनको जब निगल जाओगे तो भगवान वहां पर आपको बध करके आपका उद्धार करेंगे। तो वही बकासुर जो हयग्रीव का पुत्र था उत्कल, वो बगुला बन गया जजालिक के साथ लेकर के, वही फिर भगवान का हाथ में जो मारा गया, फिर उनका भगवान के द्वारा उद्धार हुआ। ऐसे कई प्रसंग है। धनुकासुर जो कि एक बहुत बड़ा ये था देवता था, वो बलराम जी के द्वारा मारा गया, क्योंकि दुर्भाषा जी के द्वारा उनको धनुकासुर को दुर्भाषा जी के द्वारा सांप मिला था। धनुकासुर तालवन में जो रह रहा था उनको सांप मिला था, दुर्भाषा जी से सांप मिला था। दुर्भाषा जी के साथ द्वारा स्थापित होकर के वो धेनुका गधा बन गया था। फिर और दुर्भाषा जी उनको कहे थे तुम्हारा मृत्यु बलराम जी के द्वारा होगा, इसलिए बलराम जी धेनुका का वध किए। और दूसरा बात है, भगवान कृष्ण ने धेनुकासुर को आशीर्वाद दिए थे, जो विरोचन का पुत्र था। धेनुकासुर जो था यो बलि महाराज का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र था साहसिका। हाँ, और भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिए थे, आशीर्वाद दिए थे कि हाँ आगे आपका नाम मेरे द्वारा आपका वंश में कोई किसी का मृत्यु नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने उनका बध नहीं किया, बलराम जी के द्वारा बध किए। इसी प्रकार भगवान के अनंत लीला है, ये लीला जब हम श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से हमें कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सक्षम हो पाए। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की। तो समय भी नहीं है, तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, बाहर आके पूछिए, प्रभु समय नहीं है।
गाड़ी का आराम कर लो, गाड़ी का आराम कर लो।